انت بسيب ايدتين هاي تنظري دي بريسي يركو اسري حاسي بهات هي تاتا اهنا في اسري كومو اس ميساق کا ذکر ہے جو ميساق بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر تور کو کھڑا کر دیا گیا تھا تور پہاڑ کو معلق کر دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ لیتے ہو کہ نہیں عہد لیتے ہو کہ نہیں آیت نمبر 63 میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں وہ میثاق کیا تھا کیا وہ بیسکس تھی جس کا عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تو یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور رخ ہم دیکھیں گے یہاں ان کا صرف قصہ نہیں سنایا گیا بلکہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے اور جہاں ان کو بہت سارے اور احکامات بھی دیے گئے تھے مگر کچھ اہم ترین چیزوں کا ذکر یہاں پہ آیا ہے وہ جن کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی جب وہ طور پہ گئے تھے تو تختیوں کے اوپر 10 احکامات دیے گئے تھے نا انشاءاللہ تعالی ہم ان کی ڈیٹیل تو پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے یہاں پہ مختصرا ان کا ذکر چند آیات کے اندر کیا گیا ہے تو یہ شریعت کے احکامات ان کو ملے تھے اور یہی ہمارے لیے بھی مگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شکایت کی ہے کہ وہ بھی پھر گئے اور آج ہمارا کیا حال ہے ان سے جو مطالبہ کیا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا حالانکہ یہ بیسک تعلیمات بیسک اور آج بھی یہی حالات ہیں کہ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے ہم بھی کیونکہ لیکن دین کی جو بیسکس ہے نا چاہے وہ یہودیت میں ہو نصرانیت میں ہو جو اللہ کی طرف سے ادیان آئے ہیں ان کی بیسکس تو سیم ہی ہیں اور ان میں سب سے پہلی کیا چیز ہے وہ آپ وہی دیکھیں گے جو ہمارا کلمہ ہے وہی وہ پہلی چیز ہے جو ان کو بھی دی گئی تو کوئی فرق نہیں ہے ہاں بعد میں جو کئی چیزیں ہیں جو برانچز ہیں کوئی آگے اور شریعت کے احکامات ہیں ان میں تو ٹھیک ہے تبدیلی آئی لیکن بیسک چیزیں وہی رہیں اور آپ کتنی زیادہ سملیرٹی دیکھیں گے ان احکامات میں جو ہمیں دیے گئے ہیں ان میں اسی وجہ سے ہمیں یہ بات یہاں پہ بتائی گئی کیا ان سے عہد لیا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے یہ ایسا عہد ہے جو ہر معاشرے کی اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ اس میں اصلاح ہو بہتری آئے تو یہ عہد وہ باتیں وہ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہے کہ ان پہ عمل کرنا ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کیسے لیا تھا لیا ہم نے کہا گیا نا کس نے لیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح لیا پیغمبروں کے ذریعے ٹھیک ہے یہ ان سے وعدہ لیا گیا سمجھ میں کیا لا تعبدون الا اللہ کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا پہلے امر نہیں آیا کہ نہ عبادت کرو تعبدون آیا تم عبادت کرو گے یعنی کیا اس کا معنی فیوچر میں آیا نا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی بات کریں نہیں کرو اور دوسرا آپ کہیں تم یہ نہیں کرو گے تو کس میں زیادہ زور ہے نہیں کرو گے تم اس میں زیادہ زور ہے نا تو تم نہیں کرو یہ بھی ایک حکم ہے لیکن نہیں کرو گے تم یہ اس میں تاکید زیادہ ہے زور زیادہ ہے سختی زیادہ ہے شدت زیادہ ہے تو پہلا ہی حکم کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی اور کی سوائے اللہ کے کیوں اس لیے کہ انسان کے پر سب سے بڑا حق ہی اللہ کا تو ان کو بھی توحید کا حکم سب سے پہلا حکم ہے کیونکہ سب سے پہلا حق دیکھیں خالق کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ حق رکھتا ہے کہ انسان اس ہی کی عبادت کرے اور عبادت میں کیا ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں عبادت غلامی اور جو بھی جتنے بھی عبادت کے ریچولز ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں اس کے ساتھ یعنی کسی اور کو شریک نہ کرے کسی اور کو ساجے دار نہ کرائے हिस्सेदार ना ठहरा, एक पार्टनर ना ठहरा। लोग कहते हैं हम तो अल्लाह के आगे भी मांगते हैं, लेकिन ये कब्र वालों से भी हम मांग लेते हैं, इनके आगे भी हमारी दुआ, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि ला ताबुदून इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि इसको भी किया शामिल और साथ अल्लाह ताला को भी इबादत कर ली। इबादत में दुआ भी आती है, इबादत का एक जुज एक पार्ट दुआ भी है, तो यानी दुआ भी किसी और से नहीं मांग सकते। इसी तरह किसी और के नाम की न्याज देना, कुर्बानी करना किसी और के नाम की, कि अल्लाह के नाम की भी करते हैं हम कुर्बानी, मगर फलाने के नाम की भी न्याज देते हैं, फलाने के नाम की भी कुर्बानी करते हैं, यही शिर्क है। हम अल्लाह से भी उम्मीद बांधते हैं, दूसरे और लोगों से भी उम्मीदें बांधते हैं, ताकतवर लोगों से उम्मीदें बांधते हैं, ताकतवर मुल्कों से बांधते हैं, ताकतवर कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं उनसे उम्मीद बांधते हैं, या कोई बड़े ओहदे पे है उससे उम्मीद बांधते हैं। तो ये भी शिर्क है। उम्मीद भी सिर्फ अल्लाह से, भरोसा भी सिर्फ अल्लाह पे, तवक्कल भी सिर्फ उस पे। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफी ही क्या है, और क्या है कुफर भी, यही तो है कि अल्लाह के साथ औरों से भी उम्मीदें बांध दी, उनसे उम्मीद बांधे। और आज का सबसे बड़ा जो शिर्क है, जो जिसकी इबादत की जाती है, वो कोई बुत नहीं है, यूनिवर्सल एक ऐसा बुत है, पत्थर का नहीं है, वो सभी उसकी इबादत में लग गए, चाहे कोई यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, और कोई भी है, मुसलमान है, उस बुद्ध की सारी इबादत करते। और वो बुद्ध क्या है, वो इंसान का नफ्स है, नफ्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन माबूद जिसकी पूजा की जाती है वो इंसान का नफ्स, कि इंसान अपने नफ्स की ही पूजा शुरू कर दे, यानी अपने आप की, अपना ही गुलाम बन जाए, अपनी ख्वाहिश के आगे हथियार डाल दे, मैं अपनी बात को नो नहीं कर सकती, जो मेरा दिल चाहता है बस वही करूंगी, जो मेरा दिल ना चाहे वो नहीं करूंगी, जो मेरी मर्जी होगी वो ऐसा करूंगी, जो मेरी मर्जी ना होगी तो वो वैसा नहीं करूंगी। तो बताएं तो सही, फिर और काफी क्या है, जब आपने अपने दिल की पूजा करनी है, अपने नफ्स की, अपने आप की पूजा करनी है, तो फिर अल्लाह की पूजा करनी हो सकती है। तो सारे जहानों के रब ने ये हुक्म दिया, जिसने जिंदगी दी अब जिसके पास लौट के जाना है, कि देखो याद रखना, किसी और की गुलामी नहीं करनी, किसी और की गुलामी नहीं करनी सिवाय अल्लाह। गुलामी का हक, उसको पूजने का हक सिर्फ सिर्फ इंसान को, किसको पूज सकता है, अल्लाह। आप देखें आज तो ये हालात हैं कि शेर व शायरी में भी बाकायदा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि मैं तेरी पूजा करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं, यानी अपने जिससे भी मोहब्बत होती है, महबूब होता है, उसके लिए ये कई गाने इस तरह के सुनने में आए हैं कि जिनके अंदर बाकायदा पूजा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे मुसलमान भी बड़ी लय लय के साथ गाते हैं और बहुत खुशी से करते हैं, जबकि हमारा तो पहली बात ही यही है, हमारे दीन की बेस ही यही है कि इबादत और किसी की करनी ही नहीं सिवाय अल्लाह। इबादत में इताअत भी है, इबादत में सजदा भी है, इबादत में रुकू भी है, इबादत में नमाज भी है, इबादत में कुर्बानी भी है, इबादत में नजर व न्याज भी है, इबादत के अंदर दुआ भी है, सब इबादत के ही कॉम्पोनेंट्स हैं, जज्वियात है, क्या इसी के अंदर आते हैं, किसी और के लिए नहीं हो सकते। उसके बाद इंसानों में पहला हक मेरे रब का जिसने पैदा किया, उसके बाद इंसानों में सबसे पहला हक किसका, वो जो आपके लिए सबब बने इस दुनिया में लाने का, आप दुनिया में उनके जरिए से आए, यानी जरिया बने, थ्रू उनके आप दुनिया में आपका वजूद आया, अल्लाह ने तो पैदा किया मगर उनको सबब बनाया। तो वो है ना कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो इंसानों में सबसे पहला हक वालिदैन का है, तो वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, एहसान
एहसान मैंने आपको जैसे बताया, एहसान क्या चीज होती है? अदल नहीं, बराबरी नहीं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी इनके साथ ऐसा करूंगी, ये हमें अच्छा करते थे बचपन में तो हम भी आज इनके साथ अच्छा करें, नहीं इन्होंने तो हमारी कोई केयर ही नहीं की, मुझे याद है बचपन में तो ऐसा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो तो आपने बदला थोड़ी देना है कि उन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया, देखो कहाँ पे उठा के मेरी शादी कर दी, इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया, बचपन में हमें कहीं घुमाते नहीं थे, बचपन में खिलौने नहीं लेके देते थे, बचपन में ईट आउट नहीं कराते थे, तो अब हमने भी नहीं करना इनके साथ कोई भलाई। नहीं, वालदेन के साथ एहसान का हुक्म है। एहसान क्या होता है? यानी हक से भी ज्यादा बढ़ के देना, यानी बेहतरीन सलूक, बेहतरीन मामला, यानी सबसे अच्छा, बी द बेस्ट, ये समझ लें, बी द बेस्ट। कैसे बेस्ट होंगे? यानी जिस किस्म की भी उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है या जो वो आपसे चाहते हैं, चाहे कोई माली मदद है, चाहे अच्छी बात करना है, चाहे कोई भी और चीज जो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, उसी तरह आप उनके साथ खूबसूरत मामला करें। खूबसूरती है ना, हुसन से है ना एहसान, उनको खुश कर दें। एक तरह से ये बात कहने की है कि खुश कर दें, उनका दिल राजी कर लें, दिल जीत रहे उनका, भाग रहे। तो ये है हक से बढ़ के देना, ये है एहसान। अब इसके अंदर चाहे वो खिदमत से खुश होते हैं, चाहे वो आपकी दीन को पढ़ने से खुश होते हैं, चाहे वो आपके पैसे अगर आप उनको देते हैं तो फिर तहाइफ देते हैं उससे खुश होते हैं, जिस तरीके से भी खुश होते हैं, उनको पूछने से खुश होते हैं, उनको कॉल करें उससे खुश होते हैं, इस तरह से भी खुश होते हैं, उनको बस खुश करना, उनका दिल जीतना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक सहाबी ने पूछा मेरे सबसे अच्छे बेस्ट बिहेवियर का हकदार कौन है, कौन होगा आपके बेस्ट बिहेवियर का हकदार? फ्रेंड्स होंगे मेरे ख्याल में ना, उनके साथ बहुत मजा आता है, फ्रेंड्स और कौन, और लोग जिनके साथ हमारी बड़ी बनती है, अच्छी बनती है वो, या लोग जो बाहर के लोग हैं, तो ना फिर वो कहेंगे क्या कि हमारा तो अखलाक ही अच्छा नहीं है, तो घर वाले इनके साथ तो जैसे मर्जी रहो, ये तो अपने ही है ना, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा मेरे बेस्ट बिहेवियर का हकदार कौन है? फ्रेंड्स नहीं, फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। उस शख्स ने पूछा फिर और कौन? उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। यानी प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दी गई? माँ। उसके बाद किसका दर्जा आता है? फरमाया अभी भी नहीं कि फ्रेंड, तुम्हारा बाप, के बाद बाप का। और बुखारी की हदीस है 5975 पे कि लंबी हदीस है, उसके अंदर एक बात है कि अल्लाह ताला ने तुम पे माओं की नाफरमानी को हराम कर दी और उनसे नाहक मुतालबात करना भी हराम कर दिया कि बेजा आप मुतालबे उनसे करते रहे। कभी आप उनसे कह रहे हैं कि भाई मुझे ये इतने पैसे दें, ये करें, वो करें मेरे लिए, ना हक मुतालबात भी करना हराम कर दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोनों यानी वालदैन तेरी जन्नत है और तेरी जहन्नम, दोनों ही तेरी जन्नत है और तेरी जन्नत, यानी चाहे तो इनको राजी करके जन्नत में चले जाओ, जहां इनको नाराज करके जहन्नम में चले। एक और हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब की रजा वालिद की रजा में, रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी। खुद सोच, वालिद राजी है तो अल्लाह राजी है, वालिद नाराज है तो रब नाराज है। तो उन्होंने भी इन चीजों को छोड़ा और आज हमारी भी यही हालात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी पेशीन गोई भी कर दी है कि मतलब जो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लौंडी अपनी आका को जन्म देगी, यानी ऐसी औलादें होंगी कि जो माँ को ऐसे ट्रीट करेंगी जैसे उनकी नौकर, लौंडी है उनकी, और आज वो वक्त आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त की निशानियों में ये भी फरमाया कि दोस्त को देखकर तो बाहें फैला देंगे और बाप को देख के रास्ता बदल देंगे। हालांकि माँ बाप की नाफरमानी की सजा ऐसी है कि वो मरने से पहले भी इंसान को भुगतनी पड़ती, दूसरे गुनाहों की सजा तो आखरत में है ना, लेकिन ये ऐसी सजा है जो दुनिया में भी इंसान को भुगतनी पड़ेगी। बल्कि एक हदीस में आता है, ये हदीस है तिब्रानी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला सात आसमान के ऊपर से लानत भेजता है और उनमें से हर एक पर तीन बार लानत भेजता है और हर एक को ऐसी लानत भेजता है जो उसको काफी है। ये तीन लोगों पे अल्लाह ताला लानत भेजता है, جس پہ رب لعنت بھیج دے سوچیں پھر اس کا بندے کا حال کیا. پہلا بندہ کون کون ہے؟ ہر ایک پہ تین تین دفعہ لعنت بھیج. پہلا بندہ کون؟ قوم لوط کا عمل کرنے. یہ جو گے اور لیزبینز آج کل یہ چیزیں چل گئی ہوموسیکشوئلز کی, اس کے اوپر اللہ پاک نے تین بار لعنت بھیجی ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہے, یہ ملعون ہے. یہ پھر نمبر ٹو, غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا, غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا, قربانی کرنے والا. اللہ کے نام پہ تو قربانی دی جاتی ہے اور یہ دوسروں کے ناموں کی قربانیاں دیتا ہے. تین بار اس پہ لعنت. اور تیسرا کون ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اس کے اوپر تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دی, اللہ تعالیٰ نے لعنت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا. اور ایک اور حدیث ہے طبرانی کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی, لیکن اپنے کام کا احسان جتانے والے کو, ماں باپ کے نافرمان کو اور عادی شرابی کو یہ خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. اللہ رحم کرے, ہم تو ذرا سے کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے تھے فوراً چین نہیں آتا جب تک احسان نہ جتا لیں. یاد ہے تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا, یاد ہے جب تم آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم نے ہی تمہاری ٹیک کیئر کی تھی. تمہیں یاد ہے جب تم لوگوں کے پر یہ حالات آئے تھے تو کون تھا جو تمہارے لیے کھڑا ہوا تھا؟ اللہ اکبر, تو ہم کتنا جلدی احسان جتاتے ہیں, اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اللہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کے اوپر احسان جتایا ہو, کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر کے, اور ماں باپ کا نافرمان جو ہے, جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو بھی جنت کی کوئی خوشبو نہیں آئی, اور اسی طرح آدھی شرابی کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے کہ ہم نے والدین کے حقوق میں جو کوتاہیاں کی. اور اس کے بعد وزیل قربا اور قرابت دار, قرابت دار رشتے دار, اور اس کے اندر رحم کے رشتے جو آ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے, یعنی جو بلڈ ٹائز ہیں, جو خون کے رشتے ہیں, اور ان میں قریب ترین دیکھیں ہم ماں باپ کے ساتھ تو ہے ہی, ان کا تو پہلے ذکر آ گیا قرابت داروں کا. ماں باپ کو الگ کر دیا گیا, حالانکہ وہ بھی رشتے بلڈ ٹائز ہیں نا, لیکن ان کا اتنا زیادہ وہ ہے درجہ کہ ان کا ذکر الگ کر کے دل قربا رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں. کیا کیا ان کا آگے تو اور بات آ رہی ہے, وقول الناس حسنا, یعنی ان کے ساتھ بھی احسان کرو. پیچھے کی طرف جائیں نا, جیسے میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں اپنے والدین کا خیال رکھیں, اور بہن بھائیوں کا بھی, اور غریبوں کا بھی, اور آپ اپنے ہمسایوں کا بھی. تو کیا مطلب ہے, یعنی ان سب کا خیال رکھیں نا. بات ایک دفعہ کہی تھی لیکن سب کے ساتھ ہی وہ اٹیچڈ ہے. تو وہ بل والدین احسانہ کے اندر آگے جا کے اور دل قربا احسانہ اور بل یتامہ احسانہ اور بل مساکین احسان سب کے ساتھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب کے ساتھ احسان احسان احسان. ذیل قربا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ عدل. ہم کیا کرتے ہیں؟ عدل, یعنی ہم کسی کام کا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے کیسے ہم رشتے داری نبھاتے ہیں, اس کا اس طرح ہی بدلہ دے دیتے ہیں. وہ ہمیں بلاتے ہیں ہم بھی ان کو بلا لیتے ہیں, وہ ہمیں سلام کرتے ہیں ہم بھی ان کو سلام کر دیتے ہیں, وہ ہمیں تحفہ دیتے ہیں ہم بھی ان کو تحفہ دیتے ہیں, وہ ہمیں دعوت پہ بلاتے ہیں ہم بھی ان کو دعوت پہ بلا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے. صلہ رحمی پھر کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سے صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا تب بھی وہ صلہ رحمی کرے, تب بھی وہ جوڑے, یعنی جب اس سے جوڑا نہیں جا رہا تب بھی وہ اللہ کے خوف سے جڑ کے رہے. کوئی کچھ بھی کرے مگر ہم کس لیے جڑے؟ کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو نا اس کو پتہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا ایمان ہے نا تو پھر صلہ رحمی کریں. یعنی کیا مطلب ہے؟ رشتوں کو جوڑے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو رشتے داری ٹوٹتی کیسے ہے؟ کیسے ٹوٹتی ہے؟ جب ہم احساس نہیں کرتے, جب ہم کنیکٹڈ نہیں رہتے, جب ہم ملاقات نہیں کرتے, جب ہم بدگمان ہو جاتے ہیں. بدگمانی سے بہت زیادہ رشتے داری ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ گمان غلط کیا نہیں اور رشتہ ٹوٹا نہیں. جب ہم رشتوں کی کیئر نہیں کرتے, جب ہم ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے, رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. याद रखिए, रिश्तेदारी जोड़ने से जुड़ती है, इसके लिए यानी एफर्ट करनी पड़ती है, एफर्ट। एफर्ट के बगैर नहीं जुड़ेगी, अगर आप एफर्ट करेंगे तभी जुड़ के आएगी। तो इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि तो हम हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, रिश्तेदार हो सकता है कुरान नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ना, तो उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते। हमें ये करना, यानी उनके साथ अच्छा मामला, अच्छा सलूक, जुबान के साथ भी अच्छा करना और भी जिस्म के साथ भी उसने सलूक करना, यानी आजी से पेश आए, जिस्म से भी आपके जाहिर होना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हैं, तकब्बुर ना करें उनके साथ। एहसान की एक ये भी शक्ल है कि उनके लिए दुआ किया करें, रिश्तेदारों के लिए भी, वालदेन के लिए भी। हाँ, जिनके वालदेन दुनिया में नहीं है वो कैसे उनके साथ एहसान करेंगे, वो भी उनके लिए दुआ करें और उनके जो प्यारे थे उनके साथ अच्छा करें, चाहे तो वो उनके रिश्तेदार थे, जैसे माँ है तो खाला, बाप है तो चचा ताया, तो भी इसी तरह माँ की तरफ से है तो खाला मामू, नानी नाना, दादी दादा, ये सब रिश्तेदारियां है ना। तो इनके साथ बना के रखनी है, क्या बना के रखनी, और जितना किसी का करीबी रिश्ता है उतना ही उसका हक ज्यादा है, ये याद रखिए। जितना करीबी रिश्ता है, यानी आप सोच लेना, माँ बाप के बाद करीब तरीन रिश्ता किसका है, बहन भाइयों का, उसके बाद खाला मामू चचा पुपी इनका, मतलब अगर दूसरी तरफ देखा जाए दादा दादी नाना नानी, वो तो पहले आ गए ना, उसके बाद चचा मामू पुपी खाला ये सब रिश्ते आ गए, फिर आगे एक्सटेंडेड फैमिलीज आ गई, कजन्स आ गए। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता दूर होता जाएगा, हक कम होता जाएगा, जितना रिश्ता करीबी है उतना हक उसका ज्यादा है। और उसके बाद फिर देखिए, आप ससुराली रिश्ते भी इस तरह से रिश्तेदारी में शामिल हो जाते हैं कि हस्बैंड की तरफ से वो भी रिश्ते बन जाते हैं। वलयतामा, और यतीमों को, मैंने बताया यतीम जिसके ऊपर बाप का साया नहीं है, और यतीम वो है जो महरूम है ना, जो महरूम है शफकत से, और मिस्कीन भी वो है जो महरूम है, माली तौर पे महरूम है। तो महरूमीन के लिए रब तआला ने फरमाया कि इनके साथ एहसान करो, उसने सलूक करो, यानी आप इनको समझ लें ऐसे के जैसे ये चलते फिरते बैंक है, ठीक है, चलते फिरते बैंक है, यानी इन पे अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो आखरत इन्वेस्टमेंट बैंक में मैंने अपने पैसे को जमा करा दिया, ये वहां पे जमा होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। देखिए, एक उधर तर्स खा के किसी के साथ अच्छा मामला करना, तर्स खा के आप मामला तो कर लेते हैं लेकिन वो बहुत वक्ती तौर पे होता है, तो थोड़ी देर के लिए होता है। इसकी बजाय आप ये महसूस करें कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, जब आपको इन्वेस्टमेंट का लालच होगा ना फिर आप हमेशा करेंगे, और ये मुझे अल्लाह की नजरों में मकाम दिला देगा, ये इस उम्मीद के साथ ये काम करें, ये बहुत बड़ा मोटिव है, ठीक है, ये मुझे जहन्नुम से निजात दिला सकता है, ये मुझे अल्लाह के यहाँ मकाम दिला सकता है। लेकिन देखिए, आप ये चीज भी आज खत्म हो गई, खराबतदारों का ये हाल हो गया कि हमें बार दफा अपने बहन भाइयों के बच्चों का नहीं इल्म होता कि उनके नाम क्या है, हमें बार दफा ये नहीं पता होता किसी के ऊपर गम खुशी क्या आया, कोई बीमार है क्या, किसी के हालात है। ये तो वो ही कर सकता है ना जो कनेक्टेड रहे, जब कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो फिर ये कैसी सारी चीजें पता चलेंगी। तो जब आप रिश्तेदारों से दूर रहेंगे, जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, जब आप किसी के साथ क्या अता पता नहीं लेंगे, तो आपको कहाँ ये मालूमात होंगी, कैसे एहसान कर सकेंगे। तो जब अगर आप एहसान करने का सोचते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उनके साथ वेल कनेक्टेड रहें। इसी तरह यतीमों मिस्कीनों को आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपनी कम्युनिटी में हालात का पता रखेंगे, कम्युनिटी में मिलें जुलेंगे। और अगर आप सिक्लूडेड रहते हैं, मैंने तो नहीं किसी से मिलती, और किसी से मिलने का फायदा क्या, लोगों से तकलीफ ही पहुंचती है, बेहतर है अपने तक ही इंसान रहे, कोई जरूरत ही नहीं है हमें कि हम किसी को मिलें जुलें या कहीं जाएं, या हम किसी की खैर खैरियत मालूम करें, या किसी का सर सलाम दुआ करें, या हम मस्जिद जाएं या लोगों में घुले मिले, मस्जिद भी गए तो बस अपनी नमाज पढ़ी और मुंह ध्याने वापस आए, कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। फिर मुझे बताएं आपको पता कैसे चलेगा? ये वही कर सकता है जो वेल कनेक्टेड है, तो लोगों के साथ मिलजुल के रहें, सिक्लूडेड मत रहें, क्या? और एक बहुत अहम बात यहाँ पे देखने की ये है, जैसे हम देखते हैं ये उनसे अहद लिया, हमसे भी अहद लिए गए इस मामले में, मिस्कीनों के साथ सलूक करने, यतीमों के साथ सलूक करने, यतीम की परवरिश करने वाले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली उठा के साथ मिला के इशारा फरमाया कि जैसे ये उंगलियां करीब करीब है ना, इस तरह हम करीब होंगे। तो आज क्या हालात है, हमारे घरों में बहुत जगह है, लेकिन किन के लिए? जो हमारे जैसे स्टेटस रखने वाले लोग हैं या हमसे ऊंचे स्टेटस में माशरे में, उनके लिए बिस्तर अलग है, क्रॉकरी अलग है, उनके लिए हमारी स्माइल अलग है, हमारे लिए हमारे बिहेवियर्स अलग है। अगर जो माशरे के महरूम लोग हैं, हाँ वो रिश्तेदार हैं, हाँ उन्हीं रिश्ता रखते हो, मगर उनके साथ हमारी नजरें बदल जाती, क्यों, क्या हो जाता? इनसे अच्छा किया तो बदला देने वाला तो कोई नहीं, मिस्कीन हमें क्या बदला देगा, ये लिहाजा से क्या करना अच्छी बात। और ये यतीम, इसको बदला देने वाला तो वैसे कुछ नहीं, तो बेचारे वैसे ही खुद ही गिरते पड़ते फिरते हैं, खुद ही मोहताज है, तो ये हमें क्या देंगे, तो लिहाजा इनके साथ भी कुछ रुख करने की जरूरत। तो आप देख लें कि यहाँ पे हमें कोई बदला नहीं मिल रहा होता, वहां हमें बेपरवाह हो जाते, इसको तो जैसा तैसा भी दे दो, कोई कोई बात नहीं, इसको तो गुजारा ही कराओ। यतीम के सर पे हाथ रख देना, अल्लाह ताला इस यतीम के बालों के बराबर वो हाथ रखने वाले के गुनाह झाड़ देगा। और ये चीजें हैं जो दिल की सख्ती को दूर करती है, दिल की सख्ती के बारे में पढ़ाती हूँ, तो दिल की सख्ती को दूर करने के लिए ये टिप है कि यतीम के सर पे हाथ और मिस्कीन को खाना खिलाएं। ये टिप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, ये दो काम करें, खाना खिलाइए मिस्कीनों को, खाना खिलाइए जितना आप खाना खिला सकते, और यतीम के सर पे हाथ, यानी सिर्फ उसका हाथ रखने का मतलब ये नहीं है कि उसको स्पॉन्सर कर लिया, उनकी केयर करना, उनके लिए उनके मामलात में दिलचस्पी लेना, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी लेना, और स्पॉन्सर करना भी बाहर क्या, उनको इस चीज की भी जरूरत है। अगर रिश्तेदारों में कोई नहीं है तो उसके तो डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, क्योंकि एक तो और डबल अजर है, एक तो वो यतीम, दूसरी वो आपका रिश्तेदार है, तो आपको दो अजर मिलेगी, रिश्तेदारी निभाने का भी और यतीम की किफालत का। और अगर मिस्कीन है आपके कोई रिश्तेदार तो तब भी आपको डबल अजर मिलेगा, क्योंकि आप बाहर तो किसी मिस्कीन को दे देते हैं पैसे, कोई बात नहीं है, बाहर भी आप चैरिटी करते हैं, बाहर भी आप किसी ऑर्फनेज में यतीम खाने में दे देते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार मिस्कीन और यतीम है ना, इनका आपको अजर ज्यादा है, इनका हक ज्यादा है, दो हक है इनके, मिस्कीन होने की वजह से भी और रिश्तेदार होने की वजह से। तो इनका हक तो सिर्फ वो ही दे सकता है, इनके साथ एहसान याद रखे सिर्फ वो ही कर सकता है जो सिर्फ अल्लाह से बदला चाहता है, इनसे तो कुछ मिलना है नहीं, बल्कि बाज दफा रिश्तेदार मिस्कीन है या यतीम है उनकी तरफ से आपको कोई तकलीफ दे बातें सुननी पड़ जाती है, आपको कुछ कोई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाती है, कोई आपको बात सुना देते हैं तो तकलीफ ही होती है, तो अब इनसे अगर आप बदला चाहते हैं तो बदला तो नहीं मिल सकता। आप ये सोचते होंगे कि मैं बाहर कहीं दे दूं, इसको नहीं दूंगी, ये रिश्तेदार जो हमें बातें ही सुनाते हैं, इनसे हमें आज तक क्या मिला, कभी कोई सुख नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब आपने इसको इन्वेस्टमेंट बैंक समझा ना, तो यहाँ पे जैसे कोई आपको ये तो हराम की वो होते हैं जो आपको वो देते हैं, दुनिया के बैंक जो सूद आपको देते हैं उसके ऊपर मुनाफा देते हैं, मगर देखिए अल्लाह का बैंक ऐसा है कि जहाँ पे सुभान अल्लाह ये दुनिया में आपको कहते हैं ना आपको 2% देंगे, और यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये वाला अकाउंट अगर आप खुलवाएंगे तो इसमें 10% आपको मिलेगा, तो ये भी समझ लें कि इसमें डबल मिलना है आपको, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे डबल मिल रहा है। और फिर वह कूलू लिन्नास हुस्ना, और लोगों के साथ लिन्नास, यहाँ पे क्या लिल मुस्लिमीन है, लिल मुमिनीन है, हाँ वो उनके साथ तो आप करेंगे, वो तो आपके भाई हैं, लेकिन यहाँ पे आम है, ये नास, नास में कौन है, लोग, सारे लोग, सबके साथ खूबसूरत बात करो, अच्छी बात करो, भली बात करो। भली बात का मतलब क्या होता है, कौन सी बात होती है, जो वैसे भी खूबसूरत बात हो, ब्यूटीफुल बात हो। ब्यूटी को कैसे डिफाइन करें, जाहिरी तौर पे भी खूबसूरत हो, अच्छी बात हो, बातनी तौर पे भी खूबसूरत हो, यानी जाहिरी खूबसूरती क्या है इसमें, यानी नरम बात, अच्छा स्टाइल आपका जो है ना, नरमी के साथ प्यार से बात की जाए, अच्छी तरीके से बात की जाए, सुलझी हुई बात की जाए, अदब के साथ बात की जाए, तमीज के साथ बात की जाए, लिहाज के साथ बात की जाए, और बातनी खूबसूरती क्या होगी, कि उसका कंटेंट भी अच्छा हो। समझे, ये नहीं है कि आप जाहिरी खूबसूरती तो इतनी नरम प्यारी बात कर रही है लेकिन झूठ बोल रही है, ये नहीं है कि आप खूबसूरत बात कर रही है लेकिन चापलूसी करने लगी है, खुशामद करने लगी है, या कोई और आपकी बात में ऐसी है कि वो कहते हैं ना, जैसे ठंडी ठंडी मारते हैं, गुस्से में तो नहीं बात की, बात भी कर दी लेकिन ऐसी चुभती हुई बात की बड़े प्यार से, मगर ये कि दूसरे को मार डाला। देखिए उसका कंटेंट भी तो अच्छा होना चाहिए, कूलू लिन्नासी हुस्न, सबके साथ ही अच्छा करना है, तो जो अपने उनके साथ कितना अच्छा करना है, सोच। अब इसमें दोनों तरह के लोग हैं, बाज लोग ऐसे हैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों में गुम रहते हैं, और बाकी लोग दुनिया में जो मर्जी मुसीबत में पड़ा रहे, जो मर्जी इसके ऊपर कयामत आज टूट पड़े, उनको कोई बनी नहीं, हम तो अपनों के साथ ही बस करते हैं, हमारी जो बिरादरी के हैं, हमारी जो जुबान बोलने वाले हैं, हमारे जो इलाके के लोग हैं, बस उनको वही अच्छे नजर आते हैं, बाकी उसके अलावा उनकी बला से किसी के साथ कुछ भी होता रहे उनको परवाह नहीं होती, उनकी सारी अच्छाई सिर्फ उन्हीं के साथ है, अपनों के साथ। और दूसरी एक्सट्रीम पे कुछ लोग ऐसे हैं तो वो सिर्फ बाहर वालों के साथ ही अच्छा करते हैं, अपने चाहे उनके ऊपर कुछ भी गुजरती रहे, कोई तकलीफ में है उनका पूछना ही नहीं, अपने घर का पता नहीं है, दुनिया जहान को संवारने के लिए उन्होंने ठेका लिया, तो अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा बुरे हैं, अखलाक में भी सबसे ज्यादा बुरी बात करते हैं, सबसे ज्यादा बुरा मामला करते हैं, और उनकी फिक्र परवाह नहीं है, लेकिन बाहर वालों के साथ इतनी प्यार से बात करते हैं कि बाहर वाले उनके अखलाक की तारीफें करते हैं, तो ये क्या बात है। यहाँ पे कहा गया नासी हुस्ना, सबके साथ अच्छी तरह बात करते हैं। अब अच्छा इसके अंदर एक और भी बात देखिए, इसमें ये भी आ गया कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, काफिर भी हो तो आपने उसके साथ अच्छे तरीके से बात करनी, ये नहीं ये तो काफिर है, इसके साथ तो आप गालियां दो इसको और बुरी तरीके से बात करो इसको, और इसके साथ हम अच्छी तरह क्यों बात करें। अब देखें हम गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं तो वहां पे तो ज्यादा गैर मुस्लिमों के साथ मामला होता है, अब यहाँ पे तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो ये इनका रोब और इनका हुकूमत और इनकी सारी वो है, वहां पे तो बड़े दब दब के बात करेंगे, बड़े खुशामदी तरीके से इस तरह बात करेंगे, जहाँ पे हमें पता है कि हम डोमिनेंट है वहां पे फिर हमारी हालात देख लें, तो फिर हम कैसे अपना दीन दूसरों तक फैला सकते हैं अगर हमारी बात में ही हुसन नहीं है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खास तौर पे जब दीन की बात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो वो बात जो दिल में उतर जाए, ऐसी बात कर, दिल नशीन बात, दिल नशीन पहराए, यानी अच्छी बात में फिर दीन की बात की भी खूबसूरती आ जाती है कि इस तरीके से बात की जाए, ये नहीं हम तो हक बात कहेंगे भाई, हम तो सीधी बात करेंगे, बाद लोग ये कहते हैं भाई हम तो हक कहते हैं, हम हक, अब वो हक इस तरह दे के मुंह पे मारते हैं कि दूसरा बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाए, या फिर वो ढीठ हो जाएगा, या वो जिद में आ जाएगा, कहेगा मैंने अब करना ही नहीं, तो ये कोई हुसन वाली बात नहीं, हक बात कहें लेकिन हक मारे ना दूसरे के मुंह पे। अच्छा बाद लोग इस तरह से फिर कहते हैं भाई हम तो कभी किसी की गीबत नहीं करते, जो बात है ना मुंह पे कहते हैं, साफ कहते हैं, अब मुंह पे साफ क्या कहते हैं, वो ऐसा तंज, ऐसे ताने देंगे कि दूसरा इंसान जो है ना उनके सामने आने से कतराएगा कि मैं इसके सामने बैठूंगी तो कोई ना कोई बात ना मुझे सुना दे, मेरी बेइज्जती ना करते। तो कभी कभी हम इस चीज को भी बड़ा वो समझते हैं कि हम बड़ा सामने बात करते हैं, हम बड़े देखो कितने साफ गो हैं, कोई साफ कोई नहीं, वही मुंह कुल्ली हूँ मजा दिल में मजा, उन लोगों के ऐब चुनने वाला, ऐब गोई करने वाला, ताने देने वाला, उसके लिए वैल है, तो ये नहीं है बात के पीछे पीछे नहीं करते तो आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप मुंह पे दूसरों के मारते हैं बातें, और जो बात का जख्म है ना ये ऐसा जख्म होता है ये भरता नहीं है जल्दी, इसी तरह बास दफा हम लोगों के साथ कहते हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। अब मजाक मजाक में आप उसकी ऐसी इज्जत उतारते हैं कि वो बेचारा कुछ समझ नहीं आती कि अब मैं जवाब दूं तो क्या दूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं मजाक कर रही थी। और अब आप वो इसको सीरियस भी नहीं ले सकता, सीरियस लेगा तो आप कहेंगे वो लो तुम मजाक भी नहीं बर्दाश्त करते। अब वो ना सीरियस ले सकता है ना आपको कोई जवाब दे सकता है। देखिए कुरान का हुक्म है कूनु लिन्नासी हुस्ना। अच्छा एक काम कीजिएगा, ये सिर्फ हिस्सा ना कूनु लिन्नासी हुस्ना, जिसको खूबसूरत कैलीग्राफी करनी आती है ना वो इसको खूबसूरत लिख के, ऐसे आप अपने घर में और चीजें लगाते हैं तो बजाय इधर उधर की अपने बच्चों की तस्वीरें लगाई हुई हैं और लोगों की तस्वीरें सारी दीवारों पे भरी पड़ी हैं, कुरान की आयतों को लगाएं और इससे अपने घर को इसलिए सजाएं, ये नहीं कुछ सजावट की चीज की खातिर, इसलिए कि जब भी आपकी नजर पड़ेगी ना आपको याद आ जाएगा। खासतौर पर अपने सिटिंग रूम में अगर लगा लें जहाँ पे आप लोग बैठते हैं फैमिली बैठती है, तो फूल उसे हंसना लोगों से अच्छी तरह बात, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि मेरे बंदों से कह दें कि वो अच्छी बात करें, क्योंकि शैतान दिलों में फूट डलवा देता है। लेकिन जब अच्छी बात नहीं ना करते थे कि आप किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी को मजाक मजाक में उसकी इज्जत उतारेंगे, तो वो उसके दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत आएगी, क्या उसके दिल में आपका बड़ा मुकाम मरतबा आएगा? नहीं आएगा। तो शैतान दिल में ना फिर फूट डलवा देता। आप ऐसे ही काम, मैं तो बस ऐसे तुमसे प्रैंक हो रही थी, तुमने इसको बस सीरियस ले लिया। तो देखिए ना क्या आप मजाक में अच्छी बात नहीं कर सकते। मुझे तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि देखें वो कोई मजाक नहीं होता जिसमें दूसरे की दिल आजाद। आपका तो मजाक हो गया और दूसरा हर्ट हो गया, ये कैसा मजाक हो जिसमें आपने तो मजा ले लिया? ये तो मीननेस है, ये तो सेल्फिशनेस है। आप सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ, आपका हो गया फन, आपका हो गया मजा, और आपके मजे में देखें किसी को कितनी तकलीफ पहुंचाती, सिर्फ अपने थोड़े से मजे के लिए, सिर्फ अपने थोड़ी देर के लिए दिल खुश करने के लिए। आपका दिल क्या दूसरों को तकलीफ दे के खुश होता? खुद सोचिए कि आपका मिजाज कैसा है फिर। अच्छा हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं तो उसमें क्या किया जाता अक्सर मजलिस में, एक को पकड़ लेते फिर उसकी वो बैशिंग शुरू करते हैं, वो बैशिंग शुरू करते हैं, और वो बेचारा शर्मिंदा होता था, वो खिसियाना हुआ जाता। उस वक्त ये बात याद कर लेगा, अच्छी बात करें, लोगों को हंसाने के लिए जरूरत नहीं है कि एक बंदे को शर्मिंदा किया जाए, उसको तकलीफ पहुंचाइए। अब वो दिल में उस वक्त उसके क्या महसूस हो रहा है आप क्या जाने, और आपका हो गया मजाक और आपके हो गए मजे, तो कितना घटिया ये एक शौक है, कितना घटिया शौक कि इंसान मजा इस चीज से ले दूसरे को तकलीफ देगी, दूसरे को पोक करके, समझ लें आप दूसरे को सुइयां चुभा के मजा लेते हैं। कितना गंदा जहन है ना ये, तो सुई का तो जख्म फिर भी भर जाएगा लेकिन ये जुबान का जख्म उसके कभी नहीं भरेगा। सोच लें फिर हम किसी को ऐसा करते हुए देखें कि कोई किसी को टॉर्चर करके मजा लेता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको सिख साइको कहते हैं और बहुत बुरा समझते हैं। और जो लोग मजाक में ऐसे करते हैं वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला का तो हुक्म है कूनु लिन्नासि हुस्ना, सब उनके साथ अच्छी बात करो। अच्छा फिर एक बात और देखें, ये अच्छी बात करनी अगेन फिर उनके साथ तो बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, जहाँ पे हमें हमसे कोई बड़े हैं, हमसे स्टेटस में बड़े हैं, उनके साथ तो बड़ी बीच बीच के बातें करते हैं। आम लोगों के साथ क्या करते हैं? असल आपको किसी का पता ही नहीं है कि वो कोई बड़ा आदमी है, बड़ी कोई चीज है, आपकी उसके साथ क्या बात होती है, कैसे बात करते हैं? तो फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ये तो फलां है, वो जो नामी ग्रामी वो बंदा है, तो फिर फौरन अच्छा आप वो मैंने तो आपको पहचाना है, तो आप पहले फिर क्यों उसको एक आम बंदा समझ के, एक आम बंदे के साथ आपका रवैया अलग है, और एक जब किसी का पता चल जाता है कि वो बहुत बड़े स्टेटस वाला है तो आपका रवैया अलग हो जाता है। तो आपने सबके साथ तो फिर अच्छा नहीं किया, फिर आपने तो ये किया कि पिक एंड चूज किया, जिससे हमें मतलब, जिससे हमें फायदा, जिसको हम बड़ा समझे उसके साथ तो अच्छे अच्छे बात करें, बाकी ये आम आवाम के साथ क्यों अच्छी तरह बात करें, इनको तो जरा पैर के नीचे ही रखना चाहिए, और अच्छी तरह बात की ना तो देखना सर पे चढ़ जाएंगे। यही है ना हमारा रवैया और यही हमारी सोच है, इतना शैतान ने हमें बहकाया है। हमारे अल्लाह ने तो कहीं कुरान में फरमाया जिन लोगों ने पूरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लिया अब तक पढ़ के, बाकी लोगों तो नहीं कहूंगी जो यहाँ तक पहुंचे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल किया, वो बताएं। कहीं आपने ये पढ़ा है कि अच्छी तरह बात ना करना क्योंकि लोग सर पे चढ़ जाएंगे, और लोग तुम्हारे सर पे चढ़ गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अल्लाह तआला ने तो हर एक तरह की गाइडेंस दी है ना हमें, तो कहीं ये फरमाया नहीं, ऐसा फरमाया ना, ये हमें किसने सिखा दिया? शैतान के काम है। हमें तो ये बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई को देख के मुस्कुराना भी सदका है, तो मुस्कुरा दिया करो देख के। ये भी ऐसे ही तुमने सदका कर दिया, चलो और नहीं सदका कर सकते यही कर लिया करो। तो बात यह है कि हर एक के साथ अच्छी तरह बात करनी, हर एक के साथ भलाई की बात करनी, और इसमें हम सबको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो घर में हो हम या बाहर हो, ये नहीं कि घर में हमारी टॉक डिफरेंट है और बाहर जब लोगों के साथ है तो हम इतने नाइस हैं कि बस, और घर में बच्चों से या हस्बैंड से पूछें तो वो कहेंगे कि अल्लाह की पनाह है कि ये क्या इसकी जुबान, ये ना हो। ये भी ना हो कि किसी को खुश करने के लिए झूठ कह रहे हैं या खुश आमदे कर रहे हैं या कुछ और बातें कह रहे हैं, और ये भी ना हो कि डबल फेस्ड हो जाए कि जिसके सामने गए उसी साथ अच्छी बात कर ली और कह दिया मैं तो कुरान के इस हुक्म पे अमल करें कौन ना से उसने, और दूसरों की बुराई करने लग गए ताकि इसको खुश करने ना अच्छी बात जो हमने करनी है। तो इसको मुसलसल प्रैक्टिस से हमने इसको लेकर आना है और सबके साथ करनी, चाहे वो हमारा नौकर है, चाहे वो कोई फकीर है, चाहे कोई मिस्कीन है, चाहे कोई कराबतदार है, चाहे कोई यतीम है, चाहे किसी ने हमारे साथ अच्छी नहीं भी बात की थी। वाकिमुस्सलाता व आतुस्सकात, अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कायम करो नमाज को और अदा करो ज़कात को, पहले हमने पढ़ा है। और देखिए सुभान अल्लाह, बनी इसराइल से भी नमाज का कायम करने का वादा लिया गया था कि वादा करो इसको और ज़कात देने का वादा करो। अब आप ये देखिए ये नमाज और ज़कात का हुक्म कहाँ जाके आ रहा है। हम तो सोचते हैं कि कुल दीन ही क्या है, नमाज और ज़कात, और जो ये करने लगे वो सोचते हैं कि हम तो दीनदार हो गए, मैं तो बड़ी दीनी हूँ, क्यों सोम और सलात की पाबंद हूँ, यही समझते हैं ना, वो दीनदार कहलाएगा जो नमाज रोजा ज़कात कर ले। हालांकि यहां से पता चलता है ये नहीं कि नमाज रोजे या ज़कात का दर्जा कम है, नहीं, बल्कि यहां से ये पता चलता है कि जिसको हम कुल दीन समझ लेते हैं ना वो कुल दीन नहीं है, उससे पहले कई चीजें हैं, कई करने के काम हैं, और वो क्या है, तौहीद, और उसकी सारी जो भी मैंने आपको बातें बताई, वालदैन के साथ एहसान, कराबतदारों के साथ एहसान, यतीमों के साथ एहसान, मिस्कीनों के साथ एहसान, और बात बात बात, ये जो जुबान से निकली हुई बात है कभी वापस नहीं आ सकती, कई चीजें लौट सकती हैं लेकिन ये वो तीर है जो कि निकल गया ना एक दफा ये वापस नहीं आना, इसीलिए कई लड़ाइयां इसी वजह से होती हैं, ये जुबान की कई बात कोई मुंह से निकल जाती है उसकी वजह से। तो इसके ऊपर खास तवज्जो दें, उसके बाद है फिर नमाज और ज़कात का हुक्म। और देखें एक बात फिर कहूंगी क़याम नमाज के हवाले से, क़याम सलात के हवाले से, हालांकि पहले हम पढ़ भी चुके हैं इसके ऊपर और बार बार आएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में दो भाई थे, उनमें से एक दूसरे से 40 दिन पहले था। अब दोनों का अमल एक जैसा था, दोनों एक साथ मुसलमान हुए इस तरह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो पहले मरने वाला था ना उसकी बड़ी तारीफ बयान की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या दूसरा मुसलमान नहीं था? सहाबा ने फरमाया क्यों नहीं था जो बाद में मरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या जानो जो दूसरे की नमाज उसने अपने भाई से 40 दिन ज्यादा पढ़ी, उसकी नमाज की काउंटिंग कितनी हो गई, 40 दिन ज्यादा हो गई, उसने उसको किस दर्जे पे पहुंचा दिया, कितना ऊंचा उसका दर्जा कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि देखो अगर किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो उसके अंदर नहाए 5 दफा दिन में तो क्या उसके ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाता है बाकी? उन्होंने फरमाया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला भी ऐसे ही है, तो तुम्हें क्या पता कि वो जिसने 40 दिन की नमाजें ज्यादा पढ़ी पहले वाले से कितना बुलंद मर्तबा, कितना ऊंचा मकाम तक उसको पहुंचा दिया। देखा है آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز کا شوق دلایا لوگوں کو؟ کبھی آپ نے لوگوں کو نماز کو کہا اس کی طرف توجہ دلائی ہے؟ ضرور یقیناً دلائی ہوگی، لیکن کبھی اس طرح سے شوق دلایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے طریقے سے شوق دلایا؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا. تو پھر سیکنڈ کیا ہے؟ زکات. زکات کی ادائیگی، زکات ادا کرو. اور زکات بھی وہی ہے، مال میں انسان جو اپنے 2.5% نکال دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بھی امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے. اور اس میں کیا، یہ سرکولیشن آف ویلتھ ہے. چند ہاتھوں میں ویلتھ سمٹی نہیں رہتی، کہ جیسے جسم میں اگر خون دوڑتا رہے نا، سرکولیٹ ہوتا رہے، تو ہی جسم ہیلدی رہتا ہے. اگر خون ایک جگہ جمع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو جسم بالکل ہیلدی نہیں رہے، تو بیمار ہو جائے، غصہ کاٹنا پڑے. تو اسی طرح سوسائٹی کا حال، اگر اس میں سرکولیشن آف ویلتھ نہ ہو، امیروں سے لے کے غریبوں تک نہ پہنچے، تو کیا ہوگا؟ یہ سوسائٹی کبھی ایک ہیلدی سوسائٹی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی راہ دینے والی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے رہے تھے کہ ایک صحابی تشریف لائے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ نقصان والے ہیں، وہ نقصان والے، وہ نقصان والے. تو وہ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت مال والے، سوائے اس کے جس نے مال خرچ کیا، ادھر بھی ادھر بھی، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. لیکن ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے، جو مال کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، بس وہ ہیں جو بچ جائیں گے. زکات، صرف زکات نہ دینے کے اوپر سوچیں، صدقہ بھی دے. ہمیں یہاں بولتے ہیں یہاں پہ زکات لگ جائے گی کہ نہیں، وہ اگر نہیں بھی زکات لگتی آپ نے ویسے ہیلپ کرنی ہے، صدقہ دے دیں. لیکن زکات کے علاوہ بھی نکالیں. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر بہت کم تم میں سے ایسے تھے جو، یعنی جو جنہوں نے مانا. یہ شریعت کے جو فنڈامنٹلز ہیں نا، ان کو بہت ہی کم لوگوں نے ان کو پکڑے رکھا تھا. میرا زیادہ تر نے منہ موڑ لیا، زیادہ تر ٹرنڈ اوے فروم، اعراض کیا، پرواہ ہی نہیں کی اللہ کے حکم کی. اور آج دیکھ لیں ان چیزوں کو، اقامت صلاح کتنی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، مسجد ویران میں، کئی گھروں کے اندر بے نمازی، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے معاشرے میں اتنا ان بیلنسڈ ہے نا، امیر امیر سے امیر تر ہے، غریب غریب سے غریب تر. کیوں ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، ساری ویلتھ ایک جگہ جمع ہو گئی. قرابت داروں کے ساتھ احسان تو چھوڑیں، کسی کے بات چیت رکھنا، کسی کے تعلقات رکھنا، وہی بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. یتیم اور مسکین کا کوئی پرسانے حال نہیں، وراثت وغیرہ میں یتیموں کا تو بالکل ہی پوچھا نہیں. اور والدین کے ساتھ احسان کا یہ حال ہے کہ والدین روتے پھرتے اور شکایات اولاد کے ہاتھوں جو دکھ وہ اٹھاتے ہیں، وہ اس کی داستانیں گھر گھر. اور قلوب الناس حسنہ تو دیکھ لیں آپ، کہ چاہے ہم دین والے، دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے ہوں یا دوسرے لوگ، لوگ اپنی عزتیں بےچارے بچائے پھرتے ہیں کہ ان سے خدا کی پناہ ہے، یہ تو کھڑے کھڑے کسی کی عزت اتار. تو ہمیں اچھی طرح بات تو کرنی ہی نہیں آتی. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، جو لوگ خاص طور پہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں اب تو ہم جتنی مرضی سختی کریں نا، ہمارے اوپر ہر چیز جائز ہوتی ہے. نہیں، کوئی بھی نہ صرف اچھے طریقے سے بات کریں، بھلائی کی بات کریں، پیاری بات کریں. کسی کو لائسنس نہیں ہے مل جاتا کہ وہ دوسروں کے ساتھ، ہاں کبھی کسی کو غصہ آ گیا، کبھی کسی کے ساتھ اونچ نیچ، کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی الگ بات، اس کو نارمل تو نہ بنائیے، اس کو اپنی عادت نہ بنائیے.